से कहा कि प्रभु हम तो ब्रह्मलोक जा रहे थे किंतु आप ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे, और पहले आपका दर्शन कर लें इसके बाद में जाएगा उनको बैकुंठ लोग। ऐसे ही और ऋषि मुनि लोग उनके पास में आए जैसा जो चाहा प्रभु हमको मुक्ति के लिए। अधिकांश लोगों ने उस समय मुक्ति मांगा भक्ति सबरी ने और उनके गुरु मातंग ऋषि
जटायु,
वो पहले ही चले गए जटायु, ये सब भक्ति मांगते हैं। और अधिकांश लोग ब्रह्मर्षि थे, उन लोगों ने उनसे मुक्ति इत्यादि की मांगी, उन्होंने जो कुछ कहा मांगा उनको वो दे दिया। अब ये लोग अपने भावों को गए तो रामचंद्र जी को देखा, स्तुति स्तुति की, प्रणाम किया, और जो बात कहने वाली थी लज्जा के मारे कहना चाहिए। क्या मांगना था इनको? ये कहना था हम लोगों ने स्तुतियों के भावों को सुना है और हम लोग गोपियों ने, वो लोग गोपी होकर के कृष्ण की जो सेवा की है, गोपियों की सेवा की है, हम भी उसी प्रकार से कामयुक्त होकर के कृष्ण के कारूप और उनका उपभोग करना चाहते। काम कामना शब्द वहां पर भी आए, काम कामात्मिका का भक्ति है वहां, कामानुगा उसको हम चाहते हैं, किंतु ये कहना संभव पर नहीं है उनसे। मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए नहीं कर सकते, किंतु भावना हुई कि आप ही के जैसा जिस कृष्ण का रूप है उस रूप को गोपियों जैसा ही हम भी उनकी सेवा कर सकें और उसको प्राप्त कर सकें, किंतु लज्जा के मारे वो रामचंद्र जी ने मन ही मन में आप समझ वंशाकल्पतरु है, कृष्ण ही है, चंद्र का कुछ भाग जैसे ढका होने पर भी वो चंद्र ही आए थे। उन्होंने ठीक है, बस उन्होंने भी कोई ऊपर से बर नहीं दिया, भीतर जैसे भीतर भीतर इन लोगों ने कामना की मांगा और उन्होंने भीतर भीतर वरदान दे दिया, जोग माया को आदेश दे दिया और जोग माया ने ब्रज में इनका जी को सभी बतला रहे हैं। यहां पर ब्रज में गोपी शरीर में जन्म लेने से ही समस्त प्राकृत भाव दूर नहीं हो जाता, कुछ प्राकृत स्वभाव रखता है, शरीर में नहीं रहे जो माया के द्वारा है ना, किंतु भाव में अभी कुछ रहता है प्राकृत भाव। इसी प्राकृत भाव को दूर करने के लिए ही योग माया ने यह घर में उनको आवश्यक रखा और कृष्ण स्वयं वहां पर चले आए। आने पर अपने आंखों से उनको भीतर ले जाकर के उनका लिंगन किया और उसका वह जो भाव था वो दूर हो गया। अब फिर तो उनको रात में पहुंचा
देश में संवर्ग नाम है
सत्तानी प्रतिशत है और भी इन लोगों का हुआ उसी के लिए से जन्म देते हैं। गोपीग्रह से एक संस्था भाव जन्म में अहंकार जन्म में वैसा और नित्य शिक्षाओं का संस्था, इसलिए सादृश्य से देख करके उद्दीपना होकर के तब इन लोगों को जो मैंने सुजोग दे करके और तब वो नित्य सिद्धा जैसे ही ये साधन सिद्धा। ऐसे ही कोई भजन यदि करे तो उनको या तो महाप्रभु जी के परिकरों से या महाप्रभु जी के लीला में उनका हो जाए प्रवेश योग माया के द्वारा, अथवा जब जब कृष्ण की लीला प्रकटित हो गई उसमें किसी न किसी रूप से आ जाए, किंतु पहले यही होगा महाप्रभु जी का, रामचंद्र जी का और लोगों का संग होकर के उनकी कृपा से। किंतु होगा कब? जब ऐसे भजन करेंगे तब, बिना वैसे भजन किए बने उत्कंठा के सहित में अत्यंत आसक्ति के सहित में सदात्म होकर के वैसा भजन दिन रात उसी की ही चिंता होगी, जैसे ये घर में है और चिंता होना ऐसे ही। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने कहा है इसलिए वहां ये लोग सब समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं जारभाव संसार के लिए सबसे खराब, किंतु गोपियों के लिए यही सबसे सरल संभव है, जो कि और महिषियों की अपेक्षा भी ये सबसे श्रेष्ठ है। इसी को साथ शिक्षा ने कुछ बतलाया है, गावस्य कृष्ण मुख निरोधित वेणुगीत अतिजूत मुद्भित कर्ण कूटी शिवंजा सारासुतम तनपयासवरात्मकस्तु तो व्याख्या करते गावत चकित्री ये गायन कृष्ण के मुंह से बचित ध्वनि को सुन करके भी कोशिश करके पीयूष समित कर्णकूट जीवन से कर्णकूटों से कर्ण के दोनों से कान को दोना बना लिया, ऐसे ऐसे करती है। यदि कोई शब्द होता है तो ऐसे कर ले, इधर आएगा ना उधर ही कर लेंगे, घोड़े और गाय ऐसा ही मानो कृष्ण के मुख से गीत से जमी गीत से निकले हुए अमृत को कर्ण के दोनों से चक्षुओं से पी रहे। और उनके बच्चों की बात तो सुनो, उनके बच्चे जो उनके दूध पी रहे थे संतान कर रहे हैं, सुनो तो उनके स्तन से जो सुनो तब सुख माने जो अपने आप दूध चुकवा रहा है। स्तन पयम कबला सतस्तु कबल तो ले लिया, कबल माने दूध,
दूध का कबल,
दूध का कबल यहां ले लिया और न निकल पाते हैं न छोड़ पाते हैं। और स्तन मुख में है और कान वहां सुन रहा है, दांत धोने से वो पी रही है, पी रहा है अमृत को और इसको गले में रख रहे भूल गया पीने, बस वहीं पर लगा हुआ है दूध का कवर। वो भी महात्मा ने दिशा सुपरा आंखों में क्या है, गायों के और इन बच्चों के आंखों निकल रहे हैं, पी रहे हैं कान से, यहां का पीना बंद हो गया, गले में अटक गया वो दूध या खाद के कवल और आंखों से आंसू झरने लगे। सनातन गोस्वामी जी बतला रहे हैं अनंत पूर्वोक्त मृगों से भी अधिक कृष्ण का संग करने वाली गायें और बछड़े हैं। कृष्ण बंसी वादन करते हुए और यदि बंसी बदन बंद कर दिया बंसी बजाना और मृगों के ऊपर में हाथ रखेंगे भाग लेंगे, बस वहां तक देख रहे हैं। पालतू यदि हिरण हो तो दूसरी बात, जंगली नहीं। और ये गायें और बछड़े सब समय कृष्ण के चलते बछड़ों की लोरी पकड़ रहे हैं, लोरी मैंने कल कंबल और सहला रहे हैं और वो कहेंगे खुजला दो तो हमारा ये और भी कंधा करके कृष्ण के कंधे पर रखना। गायों का भी बछड़ों का, बछड़ों से सख्त भाव और बछड़ियों से और गायों से मातृ भाव, गायों को माता समझते हैं और उनको सखा सखी समझते हैं। और ये मृग से भी अधिक महिमा मंडित है, कौन उनका कहता है और कृष्ण ने जिनको अपने आप पाला है ना बचपन से कितनी बड़ी महिमा होगी। यदि कहा ना कमले किसंगी पद्मगंधा नाम रखा है और नाम कहेंगे और दौड़ते ही गाय वहां पर पहुंचे, कवली भवली गंगे किसंगी किस कबरे कबरा मैंने बहुत तरह के रंग और का महात्मा कौन वर्णन करेगा। बचपन में कृष्ण जब छोटे हैं बुजुर्गों के बल चलते हैं और चलते चलते गाय के पास में पहुंचते हैं, गाय खड़ी हो जाती है और फिर चैसे मुख कर देते हैं, दूध उनका खिंचवाने लगता है, उनके मुख में अपने आप पीते हैं। इस श्लोक में गावट चौ भी आया है और टू कहां है, तू मने और क्यों मने पहले की अपेक्षा अधिक, अतः मृगों से भी अधिक। पीयूष पीयूष किसको कह रहे हैं, दो पीयूष कृष्ण का मुखारविंद का जो सौंदर्य है वो पीयूष एक, और बेनु बीच में जो पीयूष निकल रहा है उनके मुख से निर्भित होकर के ये दो पीयूष, दोनों में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कौन किसी से कम नहीं है। उस पीयूष दोनों पीयूषों को कृष्ण की रूप माधुरी और वेणु माधुरी दोनों का, कृष्ण की चार माधुरी है, पांच माधुरी चार बार वेणु माधुरी रूप माधुरी गुण माधुरी लीला, ये चारों का यह आस्वादन करती है हिरण जी। कैसे? रूप माधुरी देख रही, वेणु माधुरी कान के द्वारा पी रही और गुण माधुरी कृष्ण द्रवित होकर के बड़ी कृपा की ओर से उनकी तरफ में देख रहे हैं ना? और कृष्ण का जब ये देखना देखती हैं तो और आकर्षित होती है, और लीला माधुरी से हाथों से उनको चलाना प्यार करना, ये सब लीला माधुरी। अथवा राधा कृष्ण सवेरे में चयन कर रहे हैं निशांत लीला, और उनकी हरिणी है सुरंगा, वो उठ करके बार बार रहा नहीं उसे जाता, खोज रहे थे कहां गई हमारी सामने भी कहां है, चारों तरफ में देखती है। तो क्या कहती हैं, जैसे आ रही जल्दी उठो, तुम्हारी सुरंगी तुमको देखने के लिए ललाई सो रही है तुम्हारी सेवा करने के, बार बार इधर दौड़ती है इधर दौड़ती है, मयूर इत्यादि सब सभी ये सब लीला माधुरी। कान को उठाकर श्रद्धारूप अंजलि परिपूर्ण करके परम मनोहर और मधुर कृष्ण से बेनु बीच से जो अमृत भर निकलती है उसका पान, विशेष करके गायें सात्विक होती हैं, यदि कीर्तन करते हुए जाओ तो खड़ी हो जाए मधुर स्वर सुने से और वहीं से सुनने लगती है। मुख को उठा देती हैं, इसलिए कान को उठाती हैं, ऐसे झुल रहा है कान और उसको उठा दे, मानो वो अमृत जो है मुख के झुल में जाए, इसलिए मुख को ऊपर उठाए रहती है। उठ मुख में भी कहती हैं ऐसे मुख उठा दिया इसीलिए कि वो किस में जाए अमृत, और उसको पान कर रही है। वो वक्त भी वैसे ही बछड़ भी आनंद में विवश हो गया कायम जैसे होते हैं। सावक स्नुप सावक स्नुप सावक का माने दूध अपने आप चल रहा है इस मानने लगा गया था। बल्कि गायें ऐसे दूध नहीं देती, बछड़ों को देख करके नहीं देती, कृष्ण को देखने से ही आए बल्कि ध्वनि सुनने से अपने आप दूध देने लगे, छोड़ देती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, छड़क आते हैं कृष्ण को देख करके आप ध्वनि ध्वनि सुन सकते, क्योंकि वो गोविंद है ना, वो माने वो गो गोपी गाभी बीच में आ गई। यदि अविवेकी पशु जाति की अवस्था ये है तो औरों की क्या दशा होगी। इसलिए गोपियां कहती हैं खेत से इनकी इतनी इनका इतना सौभाग्य, कृष्ण अपने हाथों से इनको संभालते हैं, बंसी ध्वनि सुनाते हैं और ये निकट से कृष्ण को दर्शन करने का सुयोग पाती हैं। इनमें से कोई भी सौभाग्य हमारा नहीं है, ये निकट से जाए कृष्ण हाथों से स्पर्श कर सके। इसलिए यदि हम लोग वो जाति में ही जन्म लेती और बछड़े और बछड़ियां होती तो हमारा जीवन का
लसीबिलसितम मल्ली जाता शिशुल्ला फल कमल निधिंगई संगतांगी विभासी कलयतवत्सखः चित्रमस्मासु कस्मिन् वसति कपट कंदः कंदरे नंद सूनुः। श्लोक श्री रूप गोस्वामी सुत पद्मावली में है, ये रूप गोस्वामी का ही संग्रह है। श्लोक नंबर 296
नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम सहजते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरस्तिते। हे कृष्ण कन्हा विप्रभो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांशदेव नमामि तन्मे। हा देविका सुभरसदसदयाद्यवाचा जाति निपस्तभूमिदण्डवसेतुभतरति अजाप्रसादमबुधस्य जनस्तविहे तव गणेशगणनम् अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकुचन्दीवरं यज्ञं जागुतरोषितं विदधसम्पत्सम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिगतस्यापराधवस्ते ैपायनो विरहकाकर्याविभाव कुत्रेऽपि सम्यक्तया सर्वोऽपि सङ्कर्मभूतं तवैव वास्मि सवै वास्मि न दिवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे सुन करके पालकी रुकवा दी और बोले उनके चरण में जाकर के बोले जिससे मैं इसका अर्थ नहीं समझा आपने ले लिया उन्होंने बताया जैसे मैं कह रहा था कि तुमने ऐसा मूर्ख है जो पैसा दे करके नागिन को ले आकर के यहाँ वो तो काफी भी यार ये विवाह करके इतना पैसा खर्च करके ये जो लाया ये काली नागिन है और तुम्हें जरूर दसेगी ये संसार वाले ऐसे उनको समझाते ही बस पालकी वाले को कहा पालकी ले जाओ लौटा ले जाओ इस पालकी से मुझे जरूरत और वो रोटी रोटी पालकी में लौट गई घर यही रामचंद्र जी है शिवाज आचार्य ने उनको मंत्र दीक्षा दी समाज उनका विरोधी बन गया ऐसे विवाहित अभी नौजुवक और उसको ये संसार से विरक्त कर दिया ऐसे ही लोग साधु संत होते हैं उनका काम दूसरा नहीं ऐसा ही करते ऐसा जो समझे तब तो वो सुखदेव गोस्वामी की हरि कथा सुने उन्हीं के ये छोटे भैया थे ये बासुली जी की या दुर्गा की उपासना करते थे
बासुली देवी
बासुली देवी मैंने कोई दुर्गा की ही कोई
नहीं
भोग पूजा करते थे देवी जी की पूजा करते थे एक बार खूब बीमार पड़े बड़े जोर इन्होंने समझाया कि तुम उनकी पूजा छोड़ करके राधा कृष्ण की पूजा करो छोटा भैया मानता ही नहीं था मरने मरने हो गया जब बचने की कोई आशा नहीं रही एकदम बचने की आशा नहीं रही अरे अब तो तुम मर ही रहा है अब तुम मरेगा जरूर डॉक्टरों ने बच्चों ने सबने कर दिया अब कोई इलाज नहीं अब तुम एक दो दिन में मरेगा निकालिया सारे फले मानू तुम्हें कहा हमारे ऊपर भी विश्वास करो तुम एक बार तुम तो बहुत कवि है तुम भगवान का चरणों में शरणागत होकर के और तुम्हें का तुम ये मंत्र ले लो गुरु जी उनके कहने से मंत्र उन्होंने खुद ही दे दिया गुरु जी के माध्यम से हरे कृष्ण का और जब ठीक हो जाना तब गुरु जी के पास ले चले बस उन्होंने वो हरे कृष्ण आरंभ किया और बस एकदम ठीक हो गए जब ठीक हो गए तब चले गए श्री आचार्य के पास में और तब फिर गोपाल मंत्र इत्यादि की शिक्षा मिली तो सबसे पहला यही पद बनाया भजन हुए मंत्र बात किया भजन हुए मन श्री मंत्र अभय चरणार देवता देवियों का अभय चरण नहीं है कृष्ण चंद्र ही है भजन मैंने सबके लिए प्रार्थना और यही कृष्ण लिख करके जीव गोस्वामी के पास में दे दिया जीव गोस्वामी उस समय में नवदीप मंडल ब्रजमंडल और क्षेत्र मंडल तीनों एक छत्र वैष्णव सम्राट है सब लोग इनकी तरफ में देखते थे कोई सिद्धांत विचार जो कुछ होता है बस इनके पास में आते सब वो मीमांसा करते जो ये कह देते वही तो उन्होंने भी करके भेजा, पढ़ करके बड़े प्रसन्न हुए और सब बिंदा करके वैष्णवों को दिखलाया और दिखला करके सब इनको वैष्णव कवि के रूप में स्वीकार किया और पत्र में लिखा तुम भी तो इसमें ऐसे ही सुंदर सुंदर पद ये वैष्णव लोग जो पद्य लिखते थे उसको कहते हैं ब्रजबुली। ब्रजबुली माने बंगला और हिंदी ब्रज माने ब्रज की बात जैसी भाषा दोनों को मिला करके लिखते साधारण आदमी का अर्थ नहीं समझे, बंगला बंगाली भी नहीं समझेगा और इधर ब्रजवासी नहीं समझे, दोनों का मिला हुआ रूप लेकर के वो तो वही उन्होंने लिखा है। अभय चरण देख लिया ये वही कुछ नहीं, इनकी सहारा लेने से ही मैं ठीक भाव सागर से पाकर या अपनी अनुभूति के ऊपर में लिखा थे दुर्लभ मानव जन्म स्वस्थम तरह हुए भवती सबके लिए कह रहे हैं यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद में यदि पुण्य पुण्य सुख त्रुटि होती है तो मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म कहाँ ये जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप नहीं भारत वर्ष में भी उत्तर भारत में भी ब्रज में यदि और उधर में नवद्वीप अभिन्न होने के नाते तो दुर्लभ मानव जन्म सत्संग यह भव सिंधु दूसरे जन्म में नहीं तरा जा सकता, मनुष्य जन्म नहीं हो सकता और भी सत्संग नहीं होगा। सत्संग माने भगवान की जो चर्चाएं होती हैं उसी में होगा और नहीं होगा। शीत आतप बात बरिशन ए दिन ज्ञान सिद्धि है ए दिन ज्ञान में जागी रे विफल से बिन से बिन कृपा न पूरे जन चपल सुफल वाला शी आज का दिन जैसे शी आतप मैंने कर दी
भगवतामृतम पुनःपुलंद उर्गाय पदाब्जराग शिंकुमकुमेन दयितास्तनमंडितेन तद्दर्शन स्मरद्यतूर्णरूषितेन लिप्यन्ते आननुकुचौच्च हौ तदादिन सनातन गोस्वामी जी श्रीमद्भागवत से इस श्लोक को ले रहे हैं। परीक्षित महाराज जी अपनी मैया को अंतिम समय में जिस समय में सांप काटने वाला है 10-5 मिनट पहले एक घंटा पहले सुना रहे हैं। भागवतामृत की कथाएं समाप्त हो गई और उनको मैया को उपदेश दे रहे हैं कब मरने वाले हैं। अब एक आध घंटे में ही सांप उनको काटेगा और वो मरेगा बीच चढ़ेगा और उस समय में मैया भी उनसे यही पूछ रही है बेटा हमने भागवत को ठीक से समझा नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने जो बतलाया वो समझ में नहीं आया।
मरे ही अधिक सेवन करेगा तो क्या होगा, उसी तरह से जो कोई संसार का सुख है उसकी अधिक सेवा की जाए एक मात्रा का फैल उसमें मालूम पड़ता है सुख, किंतु वो भी सुख ही है। इसलिए सफल सुख के लिए वो भी लौ मात्र सुख के लिए विफल बेकार वो भी मिलता नहीं उसके लिए तो कर रहा है किंतु होता नहीं है विफल। कृपण पूरे जन उन लोगों के सामने रहकर के कृपण माने क्या है जो इस जगत में जन्म लेकर के
आत्मा का अनुसंधान नहीं किया, भगवान की सेवा नहीं किया, भजन नहीं किया, वो कृपण है। जो वाये तक आप कर्म गाली अभी स्वात्मान लोकाश्रयति सब कृपण वो कृपण। और दूरजन भगवान से बहुत दूर है इसलिए दूरजन दूर है, जो निकट है वो विमुख है वो खबर है, और दूरजन इसमें दूरजन लिखा है, और दूरजन मैंने दुष्ट जन जो भगवान का नहीं भजन करते हैं वो जितने ईमानदार सत्यवादी सचरित्र जो कुछ हों वो सब दुर्गुणों के आकर हैं, जिसमें सब दुर्गुण हैं किंतु भगवान का भजन करते हैं उसको धर्मात्मा, थोड़े दिनों में ही वो धर्मात्मा हो जाए क्षिप्रम भौत धर्मात्मा संत निगत चल। इसलिए संत लोग उनको भी संत ही कहते हैं। ये धन जौवन पुत्र परिजन पीछे की अच्छे पर की रे ये धन नहीं है। ये क्या करता है धन? आत्मा को हरण करता है, निश्चार्थी देता है। ये धन परमार्थ नहीं है, ये परमार्थ नहीं है, ये उसको हरण कर लेता है। कैसे? उसको संचित करने में, उसको रक्षा करने में सक्षम आदमी लगा है, और अंत में छायाबाजी की तरफ में वो निकल जाता है और उसको दूध दे जाता है। सबसे ये छवि है धन। धन रहेगा ना तो मरवा देगा। जैसे नहीं आजकल लोग आदमी अधिक पीस के मर रहे हैं, 10,000 रुपया लेकर के चलते हैं और किसी को पता लग गया उसको पीस देकर तो थोड़ी से पैसे दे, थोड़ा सा कुछ चीज है उसके लिए मार देते हैं। स्टेशन में गैंग रहते हैं चोरों का, ये सब या कुछ भी लेकर के चलेंगे आपके पीछे 3-4 लग जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, और कुछ खिला देंगे, चाय खिला देंगे, पकौड़ी खिला देंगे, कुछ खिला देंगे और मार देंगे। रास्ते में चलते हुए कभी किसी अजंती के हाथ से कुछ मत लें, भूखो रह जाना, किंतु उनका हाथ का पानी चाय कोई भी चीज फल महाप्रसाद भी रहे महाप्रसाद भी मत लो। आजकल कोई ठीक नहीं। ये धन कैसा है? इसे की आक्ष पर धर्म पर स्थिति है, प्रतीति है, विश्वास है, नहीं सबसे दगाबाज है कोई, आज इसी के लिए सब कुछ चल रहा है। वैसे ही यौवन यौवन चिरक खाई है नहीं, बस चमक चमक थोड़े दिन के लिए बस समाप्त। पुत्र भगवत भजन नहीं करता है तो पुत्र नहीं, इसका ठीक करी। और परिजन परिवार के दूसरे लोग, अभी देखो भजन मत कर, युवावस्था में अभी धन उपार्जन करके संसार भोगो, और जब बुरा हो जाएगा तब भजन कर। यदि रात में भजन करते हैं तो सब घर वाले लग जाएंगे विरोध में, मत भजन कर। कोई भी नहीं कहेगा अपना बंधु जैसे भजन कर, इसी की आखिर पड़ते इसमें कोई विश्वास मत रखो। एक तो ये धर्मात्म है और विरोधी है सब है, कमल दल जल जीवन भजन हरिपद नीचे कमल जैसे है उसका ममता होता है, कमल दल
पत्ता
पत्ते के ऊपर में पानी डाल दो गोलाकार बन जाता है अंडा का छोटे छोटे, और उसी के ऊपर में हवा के झोंके कभी इधर चले जाते हैं कभी इधर आते हैं, कल कभी हैं एक मिनट में फिर दूसरे। ऐसे ही जीवन कमल पत्ते के ऊपर में पानी के बूंद की तरफ में जीव रहा है, फिरते दौड़ते रहते हैं, उसकी कोई स्थिरता नहीं, कभी इधर चले जाए। ऐसे जीवन का होना चाहिए,
उपलब्धि पर उन्होंने उपलब्धि करके लिखा भजन पद, इसलिए प्रतिदिन भगवान का भजन करो। कैसे भजन करूं? भगवान अनुग्रह करके हरि कथा और हरिनाम के रूप में अवतरित है। संसारिक कथाएं जो शब्द सामान्य है, भगवान का नाम वैसे ही शब्द साधारण नहीं है। जैसे भी अरुचि रुचि अनर्थ सही जैसे भी करो, वो अपना फल जरूर दे। शुद्ध रूप से करोगे तो शुद्ध फल, और शुद्ध रूप रहने से संसारी फल मुक्ति दे सकते। नमापराधयुक्त अपराधयुक्त यदि नाम करोगे तो संसार में अर्थ रुपया पैसा स्त्री पुत्र परिवार ये सब मिल जाएंगे नवापराध से। और यदि नवा बात करोगे तो संसार से मुक्ति हो जाएगी, जो बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं मिली। आप प्रेम से करोगे तो प्रेम भक्ति मिलेगी, ब्रज के भाव से करोगे तो ब्रज भक्ति मिल जाएगी। तो समन कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन तत्रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष। गोविंद दास कहते हैं बस किसी की अभिलाषा है और कोई चीज की, बस उन्होंने इनको बड़ी सुंदर उपाधि दे दी और सब ये बनाने लगे। इनके पद बहुत से हैं, बहुत सुंदर और रचना इनके पद है। इनका भी ऐसे ही चरित्र है। जितने ये सब हैं, कल भट्ट जी की मैं कहा ये तो ऐसे कवि हैं, सूरदास जी उनके सामने कुछ नहीं लगे सूरदास और हर्षछाप इत्यादि के, ये गोविंद जी हैं, नरोत्तम ठाकुर जी हैं, जैसे चंडीदास हैं, विद्यापति हैं, ये तो ब्रज के उपास। ये बासव लतक उन्होंने ये वर्णन किया है और अष्टछात्र कवियों ने ये कल जो गा रही थी संदेश द्वारा उन लोगों ने इतना रस उन्होंने नहीं किया, नहीं हो सका जितना कि इन लोगों ने किया पदावली में। बहुत ही सुंदर, यदि भक्ति रस ब्रजवत रस यदि चखना है तो इन कवियों चंडीदास विद्यापति रोशन ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर ये सब ये भी अप्राकृति है। तुलदास को भी प्राकृतिक मत समझना, नारायण भविष्य के लिए ये सब कभी तो संभव नहीं है। वो तो आंख नहीं थी और सब कुछ में कारू देखते हैं भले बने हो ना। आज तो आपने सब कपड़े हटा दिए हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं। कित छोड़ी वह मोहन मुरली और सब कुछ छोड़ करके अकेले कपड़े सब छोड़ दिए हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं। आज ऐसा जैसा रूप बनी ऐसे ये लोग थे। किंतु जिस प्रकार से ये चंडीदास विद्यापति जयदेव ये कृष्ण के और गोपियों संबंधी श्रीमद् भागवत का ये सब भाव लेकर के वर्णन किया दूसरों के लिए संभव कभी तो नहीं सकते। उनको लज्जा आएगी या वो पहली ही अनाधिकार कर जाए, ये भावना ही नहीं कर सकते। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अप्राकृत कवि हैं। तो ये तो हो गया था ना समूह मत
हो गया
आकाश के बादलों की बात करी, उससे वो आगे बढ़ गए तो नदी की बात कहा। गोपियां सारी थी, ये दूसरों को पता नहीं लगने देंगे, किंतु उनका भाव नर्गस पदार्थ उधार के रूप में लगी, मैं सब कुछ अपने आप जब मालूम हो गया तो उन्होंने भाव को कर दिया। कैसे करता आकाशचारी मेघों को इसका वर्णन कर दे अपने भाव को कर दिया, जैसे कि लोग समझ में क्या वो कृष्ण से बंधुत्व स्थापित करके, और कृष्ण जब चलते हैं तो मेघ जैसी छाया करके अरुण, और प्यारे बंधु के लिए सुशीतल पानी अपने आंखों के आंसुओं से उनको मेघों की, और सब जब उनसे और नहीं रहा गया तो फिर एक निकला है गायों का गावत चतुष्टम संगत नहीं गायो बसंग विहगान न यो बने। इसमें कुछ निकल आया भाव, फिर वही फिर मैं उनको ठकने एक बोल रही है प्रकाश कर रही है, फिर एक को गायों का भाव आया, गायों के भाव से उनको ठका, इसमें बादल देखी भावना ले आया और सप्त की भावना ले आया। वो कृष्ण के साथ में इनकी कितनी सखा का भाव है, बच्चों के साथ इतना प्यार करते हैं बच्चे इनको, और गायें माँ जैसी इनकी कैसी बाद में फिर कहने लगे वृंदतो बृंदतो गजृत कवला निश्चित लिखित रविवासन। चौपाई के तरफ ये मृग गाओ बेन बात करते कितना कहूं रुपया सती के बारे नंदन नंदन जितने बेरु बात वादन करते हैं उस समय रहते हुए भी चित्त से आकृष्ट हो जाने के कारण ब्रज के वृंद तो ब्रज वृक्ष ब्रज के जितने वृक्ष हैं वृक्ष माने बैल बैल और बैल ही व्यापक उसमें कांत सब आ जाए गाय का तो आगे गणवृत्त भी यहां पर करते हैं मृग और गावो गाय इसके अतिरिक्त सभी जितने पशु पक्षी हैं सब लिखित चित्र निवासम लिखित चित्र माने क्या जैसे चित्र अंकन कर देते हैं मानो पंदनवरी चित्र लेखे के समान हो जाते हैं कभी भी हिल जुल नहीं सकते एकदम ये तो चलने फिरने वाले जंगम ये जड़ हो जाते हैं। कहते हैं कि क्यों ऐसे हो जाते हैं दंत दृष्ट कबला दांतों में कवल ये मुख में रखा है तो मुख में ही कवल रह गया और बंसी बज रही है और सुन रहे हैं मुख बंद कर दिया घास इत्यादि जो उनके मुख में है जो कुछ खाने के लिए जब बस बैठे दांतों में ही पड़ा रह गया और कानों को भी पकड़ना और कानों में कृष्ण की बंसी की ध्वनि को ऐसे
कभी ऐसे ऐसे थोड़ा सा जिधर से सब जाता है गरीब में थोड़ा सा खड़े कर, इसलिए जिस न जाए इसे नीचे नहीं कर, इस तरह से बोलू। जब पशु पक्षियों की ये बात है तो गोपियों की क्या बात होती है, तो गोपियां कह रही जिससे हमारा दुर्भाग्य जो हम लोगों का ये सुजोग नहीं होता। यहाँ पर गायों और उसके बाद में बैलों को और उनके कई संचरणशील मृगों को, ये सब पशु होने के कारण गोपियां कहती हैं एक तरफ में अपना दुर्दय और दूसरे तरफ में इनका महत्व, जो कृष्ण बेनी गीत और कृष्ण के मुखार विंद का सौंदर्य का क्या दे रहा है, शांति के लिए, शांति के लिए परस्पर चित्त बहलाने के लिए ये सब कृष्ण की लीला कथाओं का लाभ कर रही है। युवा आ गए वृंद तो हे पथिया, बड़ी विचित्र घटना देखो, ब्रज में वृक्ष मृग और गाय दूर में रहने पर भी चल रही है, बहुत दूर बड़े मन से चल रही है, हरी हरी घास किरण विचरण कर रही है, बैल भी इधर दूर में है और जहां कृष्ण की बनती हुई ध्वनि, बस उनका मानो कृष्ण ने चित्त ही चुरा दिया,